नेहेमिया अध्याय 5। नेहेमिया द्वारा निर्धनों का बचाव। इसी समय लोगों और उनकी पत्नियों ने उनके यहूदी साथियों के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। इसका कारण था वे लोग जो यह कह रहे थे, हम हमारे पुत्र और हमारी पुत्रियां गिनती में बहुत है, इसलिए हमें अनाज दिया जाए कि हम उसे खाकर जिंदा रह सकें। कुछ और भी थे जो कह रहे थे, हमने अपने खेत, हमारे अंगूर के बगीचे और अपने घर गिरवी रखे हुए है कि इस अकाल की स्थिति में हमें अनाज तो मिल सके। इनके अलावा भी कुछ और थे जो यह कह रहे थे, हमने अपने खेतों और अंगूर के बगीचों पर राजा द्वारा ठहराया गया कर भरने के लिए कर्ज लिया हुआ है, हम भी अपने भाई बंधुओं के समान हड्डी मांस के ही हैं, हमारी संतान उनकी संतान के समान ही है। फिर भी देख लीजिए, हमें अपने पुत्र पुत्रियों को दास होने के लिए सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी कुछ पुत्रियां तो पहले ही जबरदस्ती बंधक बना ली गई है, अब हम निसहाय रह गए हैं क्योंकि हमारे खेत और अंगूर के बगीचे अब दूसरों के अधिकार में चले गए हैं। उनकी शिकायतें और बातें सुन मैं बहुत ही क्रोधित हो गया। मैंने अपने मन में सोचा, फिर ऊंचे पद अधिकारियों और शासकों से भी सलाह ली और फिर मैंने उनसे कहा, आप में से हर एक अपने ही भाई बंधु से जबरदस्ती ब्याज वसूली कर रहा है। इसलिए मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। उनसे मैंने कहा, हमने अपनी शक्ति भर उन यहूदी भाई बंधुओं को दाम देकर उन देशों से छुड़ाया है जहां उन्हें बेच दिया गया था। अब क्या आप लोग इन्हें दोबारा उन्हीं को बेचते जाएंगे कि हमें उन्हें एक बार फिर उनसे खरीदना पड़े? वे चुप रहे और अपने बचाव में कहने के लिए उनके पास कुछ भी ना था। मैंने उन्हें दोबारा चेतावनी दी, आप जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है। हमारे शत्रु देश हमारी निंदा करे, इस बात का ध्यान रखते हुए क्या यह सही नहीं कि आप अपने परमेश्वर का भय मानकर चले? खुद मैंने मेरे भाइयों ने और मेरे सेवकों ने उन्हें उधार के रूप में सिक्के और अनाज देना शुरू कर दिया है। कृपा कर हम उनसे यह जबरदस्ती भुगतान कराना बंद कर दें। कृपा कर आज ही उन्हें उनके खेत, अंगूर के बगीचे, उनके जैतून के बगीचे और उनके घर उन्हें लौटा दें। इसके अलावा उनका धन, अनाज, नई दाखमधु और तेल का सोवा भाग भी जो आप उनसे जबरदस्ती ले रहे हैं। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, हम उन्हें यह सब लौटा देंगे, उनसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं लेंगे, वही करेंगे जो आपके द्वारा सुझाया गया है। तब मैंने पुरोहितों को बुलवा लिया और उनसे यह शपथ ले ली कि वे इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही करेंगे। तब मैंने अपने बाहरी कपड़े के सामने का छोर झटकते हुए कहा, परमेश्वर ऐसे हर एक मनुष्य को उसके घर से और उसकी संपत्ति से ठीक उसी प्रकार झटक दे जो इस शपथ को पूरी ना करेगा, यहां तक कि उसे इस तरह हिला दिया जाए कि वह पूरी तरह खाली ही हो जाए। यह सुन सारी सभा कह उठी, आमीन, और उनके मुंह से यहावे की स्तुति निकली। लोगों ने अपनी शपथ के अनुसार ही किया। राजा अर्थशिष्टा के राज्यकाल के 20वें साल से 32वें साल तक 12 साल, जिस दिन से मुझे यहूदिया का राज्यपाल बनाया गया था, ना तो मैंने और ना मेरे रिश्तेदारों ने राज्यपाल के लिए तय किया गया भोजन खाया। मुझसे पहले के राज्यपालों ने तो प्रजा पर भारी बोझ लाद दिया था। वे उनसे उनका भोजन और अंगूर का रस छीन लिया करते थे, साथ ही चांदी के 40 शकेल भी। यहां तक कि उनके साथी सेवक तक प्रजा का शोषण किया करते थे। परमेश्वर का भय मानने के कारण मैं ऐसा ना कर सका। मैंने खुद को शहरपना बनाने के काम में लगा दिया। हमने कोई भी जमीन नहीं खरीदी। मेरे सभी सेवक इस काम के लिए वहां इकट्ठे हो जाते थे। मेरे भोजन की मेज पर हमारे पास के देशों से आए लोगों के अलावा 150 यहूदी और अधिकारी हुआ करते थे। मेरे हर रोज के भोजन के लिए एक बैल छह सबसे अच्छी भेड़ें और कुछ पक्षी तैयार किए जाते थे। 10 दिन में एक बार तरह तरह की दाख मधु बड़ी मात्रा में परोसी जाती थी। इतना सब होने पर भी मैंने राज्यपाल के लिए ठहराया गया भोजन नहीं मंगवाया, क्योंकि वैसे भी प्रजा बोझ के नीचे दबी जा रही थी। मेरे परमेश्वर मेरे द्वारा इस प्रजा के हित में किए गए सभी कामों के लिए मुझे याद रखिएगा।